कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग। लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग्म, अपनी बात अपनी भाषा में।
चौधरी इतर अली कड़े के बड़े जागीरदार थे। उनके बुजुर्गों ने शाही जमाने में अंग्रेजी सरकार की बड़ी बड़ी खिदमतें की थीं। उनके बदले में यह जागीर मिली थी। अपने सुप्रबंधन से उन्होंने अपनी मिल्कियत और भी बढ़ा ली थी और अब इस इलाके में उनसे ज्यादा धनी मानी कोई आदमी न था। अंग्रेज हुक्काम जब इलाके में दौरा करने जाते तो चौधरी साहब की मिजाज पुरसी के लिए जरूर आते थे, मगर चौधरी साहब खुद किसी हाकिम को सलाम करने ना जाते थे, चाहे वो कमिश्नर ही क्यों ना हो। उन्होंने कचहरियों में ना जाने का व्रत सा कर लिया था। किसी इजलास दरबार में भी ना जाते थे। किसी हाकिम के सामने हाथ बांध कर खड़ा होना और उसकी हर एक बात पर जी हुजूर करना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। वो यथासाध्य किसी मामले मुकदमे में ना पड़ते थे, चाहे अपना नुकसान ही क्यों ना होता हो। एक काम सोलहों आने मुख्तारों के हाथ में था, वे एक के सौ करें या सौ के एक। फारसी और अरबी के आलिम थे, शरा के बड़े पाबंद, सूद को हराम समझते, पांचों वक्त की नमाज अदा करते, तीसों रोजे रखते और नित्य कुरान की तलावत मतलब पाठ करते थे। मगर धार्मिक संकीर्णता कहीं छू तक नहीं गई थी। प्रातःकाल गंगा स्नान करना उनका नित्य का नियम था। पानी बरसे, पाला पड़े, पर 5 बजे वो कोस भर चलकर गंगा तट पर अवश्य पहुंच जाते। लौटते वक्त अपनी चांदी की सुराही गंगा जल से भर लेते और हमेशा गंगा जल पीते। गंगा जी के सिवा वो और कहीं ना जाते थे पानी के लिए। शायद कोई योगी यति भी गंगा जल पर इतनी श्रद्धा ना रखता होगा। उनका सारा घर भीतर से बाहर तक 7वें दिन गऊ के गोबर से लीपा जाता था। इतना ही नहीं, उनके यहाँ बगीचे में एक पंडित 12 मास दुर्गा पाठ भी किया करते थे। साधु संन्यासियों का आदर सत्कार तो उनके यहाँ जितनी उदारता और भक्ति से किया जाता था, उस पर राजसी लोगों को भी आश्चर्य होता था। यों कहिए कि सदा व्रत चलता था। उधर मुसलमान फकीरों का खाना बावर्ची खाने में पकता था और कोई 100-125 आदमी नित्य एक दस्तरखान पर खाते थे। इतना दान पुण्य करने पर भी उन पर किसी महाजन का एक कौड़ी का भी कर्ज न था। नियत की कुछ ऐसी बरकत थी कि दिन दिन उन्नति ही होती थी। उनकी रियासत में आम हुक्म था कि मुर्दों को जलाने के लिए, किसी यज्ञ भोज के लिए, शादी ब्याह के लिए सरकारी जंगल से जितनी लकड़ी चाहे काट लो, चौधरी साहब से पूछने की जरूरत ना थी। हिंदू असामियों की बरात में उनकी ओर से कोई ना कोई जरूर शरीक होता था। नवेद के रुपए बंधे हुए थे, लड़कियों के विवाह में कन्यादान के रुपए मुकर्रर थे। उनको हाथी घोड़े तंबू शामियाने पालकी नालकी फर्श जाज में पंखे जवर चांदी के महफिली सामान उनके यहां से बिना किसी दिक्कत के मिल जाते थे। मांगने भर की देर रहती थी। इस दानी उदार यशस्वी आदमी के लिए प्रजा भी प्राण देने को तैयार रहती थी। चौधरी साहब के पास एक राजपूत चपरासी था, नाम था भजन सिंह। पूरे 6 फुट का जवान था, चौड़ा सीना, बाने का लठैत, सैकड़ों के बीच से मारकर निकलकर आने वाला। उसे भय तो छू भी नहीं गया था। चौधरी साहब को उस पर असीम विश्वास था। यहां तक कि हज करने गए तो उसे भी साथ लेते गए थे। उनके दुश्मनों की कमी न थी। आसपास के सभी जमींदार उनकी शक्ति और कीर्ति से जलते थे। चौधरी साहब के खौफ के मारे वे अपने असामियों पर मनमाना अत्याचार ना कर सकते थे, क्योंकि वो निर्बलों का पक्ष लेने के लिए सदा तैयार रहते थे। लेकिन भजन सिंह साथ हो तो उन्हें दुश्मन के द्वार पर भी सोने में कोई आपत्ति ना थी। कई बार ऐसा हुआ कि दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और भजन सिंह अकेला जान पर खेलकर उन्हें बेदाग निकाल लाया। ऐसा आग में कूद पड़ने वाला आदमी भी किसी ने कम ही देखा होगा। वो कहीं बाहर जाता तो जब तक खैरियत से घर ना पहुंच जाए चौधरी साहब को शंका बनी रहती थी कि कहीं किसी से लड़ ना बैठा हो। बस पालतू भेड़ की सी दशा थी जो जंजीर से छूटते ही किसी ना किसी से टक्कर लेने दौड़ता है। ऐसा था भजन सिंह। तीनों लोक में चौधरी साहब के सिवा उसकी निगाहों में कोई और था ही नहीं। बादशाह कहो, मालिक कहो, देवता कहो, जो कुछ थे चौधरी साहब थे उसके लिए। मुसलमान लोग चौधरी साहब से जला करते थे। उनका ख्याल था कि वह अपने दीन से फिर गए हैं। ऐसा विचित्र जीवन सिद्धांत उनकी समझ में क्यों कर आता? मुसलमान सच्चा मुसलमान है तो गंगाजल क्यों पिए? साधुओं का आदर सत्कार क्यों करे? दुर्गा पाठ क्यों कराए? मुल्लाओं में उनके खिलाफ हंडिया पकती रहती थी और हिंदुओं को मात देने की तैयारियां होती रहती थी। आखिर में यह राय बनाई उन लोगों ने कि ठीक जन्माष्टमी के दिन ठाकुर द्वारे पर हमला किया जाए और हिंदुओं का सिर नीचा कर दिया जाए, दिखा दिया जाए कि चौधरी साहब के बल पर फूले फूले फिरना तुम्हारी भूल है। चौधरी साहब कर ही क्या लेंगे? अगर उन्होंने हिंदुओं की हिमायत की तो उनकी भी खबर ली जाएगी, सारा हिंदूपन निकल जाएगा। अंधेरी रात थी। कड़े के बड़े ठाकुर द्वारे में कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। एक वृद्ध महात्मा पोपले मुंह से तंबूरों पर धुन अलाप रहे थे और भक्तजन ढोल मजीरे लिए बैठे थे कि इनका गाना बंद हो तो हम अपना कीर्तन शुरू करें। भंडारी प्रसाद बना रहा था। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने के लिए जमा थे। सहसा मुसलमानों का एक दल लाठियां लिए हुए आ पहुंचा और मंदिर पर पत्थर बरसाना शुरू किया। शोर मच गया। पत्थर कहां से आते हैं? ये पत्थर कौन फेंक रहा है? कुछ लोग मंदिर के बाहर निकलकर देखने लगे। मुसलमान लोग तो घाट में बैठे ही थे, लाठियां जमानी शुरू की। हिंदुओं के हाथ में उस समय ढोल मजीरे के सिवा और क्या था? कोई मंदिर में आ छिपा, कोई किसी दूसरी तरफ भागा। चारों तरफ शोर मच गया। चौधरी साहब को भी खबर हुई। भजन सिंह से बोले, ठाकुर देखो तो क्या शोरगुल है, जाकर बदमाशों को समझा दो और ना माने तो दो चार हाथ चला भी देना, मगर खून खच्चर ना होने पाए। ठाकुर यह शोरगुल सुनकर दांत पीस रहा था, दिल पर पत्थर की सिल रखे बैठा था। यह आदेश सुना तो मुंह मांगी मुराद पा गया। शत्रु भंजन डंडा कंधे पर रखा और लपका हुआ मंदिर पहुंचा। वहां मुसलमानों ने घोर उपद्रव मचा रखा था। कई आदमियों का पीछा करते हुए मंदिर में घुस गए थे और शीशे के सामान तोड़ फोड़ रहे थे। ठाकुर की आंखों में खून उतर आया, सिर पर खून सवार हो गया। ललकारते हुए मंदिर में घुस गया और बदमाशों को पीटना शुरू किया। एक तरफ तो वो अकेला और दूसरी तरफ पचासों आदमी, लेकिन वहां रे शेर, अकेले सबके छक्के छुड़ा दिए। कई आदमियों को तो मार गिराया। गुस्से में उसे इस वक्त कुछ ना सूझता था, किसी के मरने जीने की परवाह ना थी। मालूम नहीं उसमें इतनी शक्ति कहां से आ गई थी। उसे ऐसा जान पड़ता था कि कोई दैवी शक्ति उसकी मदद कर रही है। कृष्ण भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हुए मालूम होते थे। धर्म संग्राम में मनुष्यों से अलौकिक काम हो जाते हैं। उधर ठाकुर के चले जाने के बाद चौधरी साहब को भय हुआ कि कहीं ठाकुर किसी का खून न कर डाले। उसके पीछे खुद भी मंदिर में आ पहुंचे, देखा तो कोहराम मचा हुआ है। बदमाश लोग अपनी जान ले लेकर बेतहाशा भागे जा रहे हैं। कोई पड़ा करहा रहा है, कोई हाय हाय कर रहा है। ठाकुर को पुकारना ही चाहते थे कि सहसा एक आदमी भागा हुआ आया और उनके सामने आता आता जमीन पर गिर पड़ा। चौधरी साहब ने उसे पहचान लिया और दुनिया आंखों में अंधेरी हो गई। यह उनका इकलौता दामाद और उनकी जायदाद का वारिस शाहिद हुसैन था। चौधरी ने दौड़कर शाहिद को संभाला और जोर से बोले, ठाकुर इधर आओ, लालटेन लालटेन, आह ये तो मेरा शाहिद है। ठाकुर के हाथ पांव फूल गए, लालटेन लेकर बाहर निकले। शाहिद हुसैन ही थे। उनका सिर फट गया था और रक्त उछलता हुआ निकल रहा था। चौधरी ने सिर पीटते हुए कहा, ठाकुर तू ने तो मेरा चिराग ही गुल कर दिया। ठाकुर ने थर थर कांपते हुए कहा, मालिक भगवान जानते हैं कि मैंने इन्हें पहचाना नहीं था। चौधरी बोले, नहीं मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, भगवान के मंदिर में किसी को इस तरह घुसने का अख्तियार नहीं है। अफसोस यही है कि खानदान का निशान मिट गया और तुम्हारे हाथों। तुमने मेरे लिए हमेशा अपनी जान हथेली पर रखी और खुदा ने तुम्हारे ही हाथों मेरा सत्यानाश करा दिया। चौधरी साहब रोते जाते थे और ये बातें कहते जाते थे। ठाकुर ग्लानि और पश्चाताप से गड़ा जाता था। अगर उसका अपना लड़का मारा गया होता तो उसे इतना दुख ना होता। आह, मेरे हाथों मेरे मालिक का सर्वनाश हुआ, जिसके पसीने की जगह वो खून बहाने को तैयार रहता था, जो उसका स्वामी ही नहीं इष्ट था, जिसके जरा से इशारे पर वो आग में कूद सकता था, उसी के वंश की उसने जड़ काट दी। वो उसके आस्तीन का सांप निकला, रुंधे हुए कंठ से बोला, सरकार मुझसे बढ़कर अभागा और कौन होगा, मेरे मुंह में कालिख लग गई। ये कहते कहते ठाकुर ने कमर से छुरा निकाल लिया। वो अपनी छाती में छुरा घोंप कर कालिमा को रक्त से धोना ही चाहते थे कि चौधरी साहब ने लपक कर छुरा उनके हाथों से छीन लिया और बोले, क्या करते हो, होश संभालो, ये तकदीर के करिश्मे हैं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। खुदा को जो मंजूर था वो हुआ। मैं अगर खुद शैतान के बहकावे में आकर मंदिर में घुसता और देवता की तौहीन करता और तुम मुझे पहचान कर भी कत्ल कर देते तो मैं अपना खून माफ कर देता। किसी के दीन की तौहीन करने से बड़ा और कोई गुनाह नहीं है। हालांकि इस वक्त मेरा कलेजा फटा जा रहा है और यह सदमा मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा, पर खुदा गवाह है कि मुझे तुमसे जरा भी मलाल नहीं है। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, चाहे मेरे मालिक का बेटा ही क्यों ना होता। घरवाले मुझे तानों से छेड़ेंगे, लड़की रो रो कर मुझसे खून का बदला मांगेगी, सारे मुसलमान खून के प्यासे हो जाएंगे, मैं काफिर और बेदीन कहा जाऊंगा, शायद कोई दीन का पक्का नौजवान मुझे कत्ल करने पर भी तैयार हो जाए, लेकिन मैं हक से मुंह ना मोड़ूंगा। अंधेरी रात है, इसी दम यहां से भाग जाओ और मेरे इलाके में किसी छावनी में छिप जाओ। वो देखो कई मुसलमान चले आ रहे हैं, मेरे घरवाले भी हैं, भागो भागो। साल भर भजन सिंह चौधरी साहब के इलाके में छिपा रहा। एक ओर मुसलमान उसकी टोह में लगे रहते थे, दूसरी ओर पुलिस, लेकिन चौधरी उसे हमेशा छिपाते रहते थे। अपने समाज के ताने सहे, अपने घर वालों का तिरस्कार सहा, पुलिस के वार सहे, मुल्लाओं की धमकियां सही, पर भजन सिंह की खबर किसी को कानों कान न होने दी। ऐसे वफादार स्वामी भक्त सेवक को वो जीते जी निर्दयी कानून के पंजे में न देना चाहते थे। उनके इलाके की छावनियों में कई बार तलाशियां हुई, मुल्लाओं ने घर के नौकरों मामाओं और लौंडियों को भी अपने से मिला लिया, लेकिन चौधरी ने ठाकुर को अपने एहसानों की भांति छिपाए रखा। लेकिन ठाकुर को अपने प्राणों की रक्षा के लिए चौधरी साहब को संकट में पड़े देखकर असह वेदना होती थी। उसके जी में बार बार आता था, चलकर मालिक से कह दूं, मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए, लेकिन चौधरी साहब बार बार उसे छिपे रहने की ताकीद करते रहते थे। जाड़ों के दिन थे, चौधरी साहब अपने इलाके का दौरा कर रहे थे। अब वो मकान पर बहुत कम रहते थे, घर वालों के शब्द बाड़ों से बचने का यही उपाय था। रात को खाना खाकर लेते ही थे कि भजन सिंह आकर सामने खड़ा हो गया। उसकी सूरत इतनी बदल गई थी कि चौधरी साहब देखकर चौंक पड़े। ठाकुर ने कहा, सरकार अच्छी तरह हैं? चौधरी बोले, हाँ खुदा का भजय है, तुम तो बिल्कुल पहचाने ही नहीं जाते, इस वक्त कहां से आ रहे हो? ठाकुर बोले, मालिक अब तो छिपकर नहीं रहा जाता, हुक्म हो तो जाकर अदालत में हाजिर हो जाऊं, जो भाग में लिखा होगा वो होगा। मेरे कारण आपको इतनी परेशानी हो रही है, ये मुझसे नहीं देखा जाता। चौधरी बोले, नहीं ठाकुर, मेरे जीते जी नहीं, तुम्हें जानबूझकर भाड़ के मुंह में नहीं डाल सकता। पुलिस अपनी मर्जी के माफिक शहादतें बना लेगी और मुफ्त में तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। तुमने मेरे लिए बड़े बड़े खतरे सहे हैं, अगर मैं तुम्हारे लिए इतना भी न कर सकूं तो मुझसे कुछ मत कहना। ठाकुर बोले, कहीं किसी ने सरकार। चौधरी बोले, नहीं इसकी बिल्कुल चिंता ना करो, जब तक खुदा को मंजूर ना होगा कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम अब जाओ, यहाँ ठहरना खतरनाक है। ठाकुर बोले, सुनता हूँ लोगों ने आपसे मिलना जुलना छोड़ दिया है। चौधरी बोले, दुश्मनों का दूर रहना ही अच्छा है। लेकिन ठाकुर के दिल में जो बात जम गई थी वह ना निकली। इस मुलाकात ने उसका इरादा और भी पक्का कर दिया। इन्हें मेरे कारण यूं मारे मारे फिरना पड़ रहा है, यहाँ इनका कौन अपना बैठा हुआ है जो चाहे आकर इन पर हमला कर सकता है। मेरी इस जिंदगानी को धिक्कार है। प्रातःकाल ठाकुर जिला हाकिम के बंगले पर पहुंचा। साहब ने पूछा, तुम अब तक चौधरी के कहने से छिपा था? ठाकुर बोले, नहीं हुजूर, अपनी जान के खौफ से। चौधरी साहब ने एक खबर सुनी तो सन्नाटे में आ गए। अब क्या हो, अगर मुकदमे की पैरवी ना की गई तो ठाकुर का बचना मुश्किल है। पैरवी करते हैं तो इस्लामी दुनिया में तहलका पड़ जाता है, चारों तरफ से फतवे निकलने लगेंगे। उधर मुसलमानों ने ठान ली किसे फांसी दिलाकर ही छोड़ेंगे। आपस में चंदा किया गया, मुल्लाओं ने मस्जिद में चंदे की अपील की, द्वार द्वार झोली बांधकर घूमे। इस पर कौमी मुकदमे का रंग चढ़ाया गया, मुसलमान वकीलों को नाम लूटने का मौका मिला। आसपास के जिलों में लोग जिहाद में शरीक होने के लिए आने लगे। चौधरी साहब ने भी पैरवी करने का निश्चय किया। चाहे कितनी ही आफतें क्यों ना सिर पर आ पड़े, ठाकुर उन्हें इंसाफ की निगाह में बेकसूर मालूम होता था और बेकसूर की रक्षा करने में उन्हें किसी का खौफ न था। घर से निकल खड़े हुए और शहर में जाकर डेरा जमा लिया। 6 महीने तक चौधरी साहब ने जान लड़ाकर मुकदमे की पैरवी की। पानी की तरह रुपए बहाए, आंधी की तरह दौड़े, वो सब किया जो जिंदगी में कभी ना किया था और ना पीछे कभी किया। अहलकारों की खुशामदे की, वकीलों के नाज उठाए, हाकिमों को नजरें दी और ठाकुर को छुड़ा लिया। सारे इलाके में धूम मच गई, जिसने सुना दंग रह गया। इसे कहते हैं शराफत। अपने नौकर को फांसी से उतार लिया। लेकिन सांप्रदायिक द्वेष ने इस सत्कार्य को और ही आंखों से देखा। मुसलमान झल्लाए, हिंदुओं ने बिगुले बजाई, मुसलमान समझे इनकी रही सही मुसलमानी भी गायब हो गई। हिंदुओं ने ख्याल किया अब इनकी शुद्धि कर लेनी चाहिए, इसका मौका आ गया। मुल्लाओं ने जोर जोर से तबलीग की हाक लगानी शुरू की। हिंदुओं ने भी संगठन का झंडा उठाया। मुसलमानों की मुसलमानी जाग उठी और हिंदुओं का हिंदुत्व। ठाकुर के कदम भी इस रेले में उखड़ गए। मनचले थे ही हिंदुओं के मुखिया बन बैठे। जिंदगी में कभी एक लोटा जल तक शिव को न चढ़ाया था, अब देवी देवताओं के नाम पर लठ चलाने के लिए उद्धत हो गए। शुद्धि करने को कोई मुसलमान ना मिला तो दो एक चमारों ही की शुद्धि करा डाली। चौधरी साहब के दूसरे नौकरों पर भी असर पड़ा। जो मुसलमान कभी मस्जिद के सामने खड़े न होते थे वे पांचों वक्त की नमाज अदा करने लगे। जो हिंदू कभी मंदिरों में झांकते न थे वे दोनों वक्त संध्या करने लगे। बस्ती में हिंदुओं की संख्या अधिक थी, उस पर ठाकुर भजन सिंह बने उनके मुखिया, जिनकी लाठी का लोहा सब मानते थे। पहले मुसलमान संख्या में कम होने पर भी उन पर गालिब रहते थे क्योंकि वे संगठित ना थे, लेकिन अब वे संगठित हो गए थे। मुट्ठी भर मुसलमान उनके सामने क्या ठहरते। 1 साल और गुजर गया, फिर जन्माष्टमी का उत्सव आया। हिंदुओं को अभी तक अपनी हार भूली न थी, गुप्त रूप से बराबर तैयारियां होती रहती थी। आज प्रातःकाल ही से भक्त लोग मंदिर में जमा होने लगे, सबके हाथों में लाठियां थी, कितने ही आदमियों ने कमर में छुरे छिपा लिए थे। छेड़कर लड़ने की राय पक्की हो गई थी। पहले कभी इस उत्सव में जुलूस ना निकला था, आज धूमधाम से जुलूस भी निकलने की ठहरी। दीपक जल चुके थे, मस्जिदों में शाम की नमाज होने लगी थी, जुलूस निकला। हाथी घोड़े झंडे झंडियां बाजे गाजे सब साथ थे। आगे आगे भजन सिंह अपने अखाड़े के पट्ठों को लिए अकड़ते चले जाते थे। जामा मस्जिद सामने दिखाई दी। पट्ठों ने लाठियां संभाली। सब लोग सतर्क हो गए। जो लोग इधर उधर बिखरे हुए थे आकर सिमट गए। आपस में कुछ कानाफूसी हुई। बाजे और जोर से बजने लगे। जय जयकार की ध्वनि और जोर से उठने लगी। जुलूस मस्जिद के सामने आ पहुंचा। सहसा एक मुसलमान ने मस्जिद से निकलकर कहा, नमाज का वक्त है, बाजे बंद कर दो। भजन सिंह बोले, बाजे ना बंद होंगे। मुसलमान बोला, बंद करने पड़ेंगे। भजन सिंह बोले, तुम अपनी नमाज क्यों नहीं बंद कर देते? मुसलमान बोला, चौधरी साहब के बल पर मत फूलना, आपके होश ठंडे हो जाएंगे। भजन सिंह बोले, चौधरी साहब के बल पर तुम फूलो, यहां अपने ही बल का भरोसा है, यह धर्म का मामला है। इतने में कुछ और मुसलमान निकल आए और बाजे बंद करने का आग्रह करने लगे। इधर और जोर से बाजे बजने लगे। बात बढ़ गई। एक मौलवी ने भजन सिंह को काफिर कह दिया। ठाकुर ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली। फिर क्या था, सूरमा लोग निकल पड़े। मारपीट शुरू हो गई। ठाकुर हल्ला मचाकर मस्जिद में घुस गए और मस्जिद के अंदर मारपीट होने लगी। यह नहीं कहा जा सकता कि मैदान किसके हाथ रहा। हिंदू कहते थे, हमने खदेड़ खदेड़ कर मारा। मुसलमान कहते थे, हमने वो मारा मारी की कि अब वो लोग फिर से सामने नहीं आएंगे। पर इन विवादों के बीच में एक बात मानते थे और वो थी ठाकुर भजन सिंह की अलौकिक वीरता। मुसलमानों का कहना था कि ठाकुर ना होता तो हम किसी को जिंदा ना छोड़ते। हिंदू कहते थे कि ठाकुर सचमुच महावीर का अवतार है। इसकी लाठियों ने उन सबों के छक्के छुड़ा दिए। उत्सव समाप्त हो चुका था। चौधरी साहब दीवान खाने में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। उनका मुख लाल था, त्योरियां चढ़ी हुई थीं और आंखों से चिंगारियां सी निकल रही थीं। खुदा का घर नापाक किया गया, यह ख्याल रह रहकर उनके कलेजे को मसोसता था। खुदा का घर नापाक किया गया, जालिमों को लड़ने के लिए क्या नीचे मैदान में जगह ना थी? खुदा के पाक घर में ये खून खच्चर। मंदिर भी खुदा का घर है और मस्जिद भी। मुसलमान किसी मंदिर को नापाक करने के लिए सजा के लायक हैं, क्या हिंदू मस्जिद को नापाक करने के लिए उसी सजा के लायक नहीं? और ये हरकत ठाकुर ने की, इसी कसूर के लिए तो उसने मेरे दामाद को कत्ल किया। मुझे मालूम होता है कि उसके हाथों ऐसा होगा तो उसे फांसी पर चढ़ने देता। क्यों उसके लिए इतना हैरान, इतना बदनाम, इतना जोरवार होता? ठाकुर मेरा वफादार नौकर है, उसने हमेशा मेरी जान बचाई है। मेरे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार रहता है, लेकिन आज उसने खुदा के घर को नापाक किया है और उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इसकी सजा क्या है? जहन्नुम। जहन्नुम की आग के सिवा इसकी और सजा कोई नहीं है। जिसने खुदा के घर को नापाक किया, उसने खुदा की तौहीन की, खुदा की तौहीन। सहसा ठाकुर भजन सिंह आकर खड़े हो गए। चौधरी साहब ने ठाकुर को क्रोधोन्मत्त आंखों से देखकर कहा, तुम मस्जिद में घुसे थे? भजन सिंह बोले, सरकार, मौलवी लोग हम लोगों पर टूट पड़े थे। चौधरी बोले, मेरी बात का जवाब दो जी, तुम मस्जिद में घुसे थे? भजन सिंह बोले, जब उन लोगों ने मस्जिद के भीतर से हमारे ऊपर पत्थर फेंकना शुरू किया, तब हम लोग उन्हें पकड़ने के लिए मस्जिद में घुस गए। चौधरी बोले, जानते हो मस्जिद खुदा का घर है? भजन सिंह बोले, जानता हूं हुजूर, क्या इतना भी नहीं जानूंगा? चौधरी बोले, मस्जिद खुदा का वैसा ही पाक घर है जैसे मंदिर। भजन सिंह ने इसका कुछ जवाब ना दिया। चौधरी बोले, अगर कोई मुसलमान मंदिर को नापाक करने के लिए गर्दन जदनी है, तो हिंदू भी मस्जिद को नापाक करने के लिए गर्दन जदनी है। भजन सिंह इसका भी कुछ जवाब ना दे सके। उन्होंने चौधरी साहब को कभी इतने गुस्से में ना देखा था। चौधरी बोले, तुमने मेरे दामाद का कत्ल किया और मैंने तुम्हारी पैरवी की। जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं अपने दामाद को उस सजा के लायक समझता था जो तुमने उसे दी। अगर तुमने मेरे बेटे को या मुझी को उस कसूर के लिए मार डाला होता, तो मैं तुमसे खून का बदला ना मांगता। वही कसूर आज तुमने किया है। अगर किसी मुसलमान ने मस्जिद में तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा दिया होता तो मुझे सच्ची खुशी होती, लेकिन तुम बेहयाओं की तरह वहां से बचकर निकल आए। क्या तुम समझते हो खुदा तुम्हें इस बात की सजा ना देगा? खुदा का हुक्म है कि जो उसकी तौहीन करे उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। यह हर एक मुसलमान का फर्ज है। चोर अगर सजा ना पावे तो क्या वो चोर नहीं है? तुम मानते हो या नहीं कि तुमने खुदा की तौहीन की? ठाकुर इस अपराध से इनकार ना कर सके। चौधरी साहब के सत्संग ने हठ धर्मी को दूर कर दिया था। बोले, हाँ साहब, यह कसूर तो हो गया। चौधरी बोले, इसकी जो सजा तुम दे चुके हो वो सजा खुद लेने के लिए तैयार हो? ठाकुर बोले, मैंने जानबूझकर तो दूल्हा मियाँ को नहीं मारा था। चौधरी बोले, तुमने ना मारा होता तो मैं अपने हाथों से उसे मार देता, समझ गए? अब मैं तुमसे खुदा की तौहीन का बदला लूंगा। बोलो, मेरे हाथों चाहते हो या अदालत के हाथों? अदालत से कुछ दिनों के लिए सजा पा जाओगे, मैं कत्ल करूंगा। मेरे दिल को कितना रंज है एक खुदा के सिवा और कोई नहीं जान सकता, लेकिन मैं तुम्हारे कत्ल करूंगा, मेरे दीन का यह हुक्म है। यह कहते हुए चौधरी साहब तलवार लेकर ठाकुर के सामने खड़े हो गए। विचित्र दृश्य था। एक बूढ़ा आदमी सिर के बाल पके, कमर झुकी, तलवार लिए एक देव के सामने खड़ा था। ठाकुर लाठी के एक ही बार से उनका काम तमाम कर सकता था, लेकिन उसने सिर झुका दिया। चौधरी के प्रति उसके रोम रोम में श्रद्धा थी। चौधरी साहब अपने दीन के इतने पक्के हैं, इसकी उसने कभी कल्पना तक न की थी। उसे शायद धोखा हो गया था कि ये दिल से हिंदू हैं। जिस स्वामी ने उसे फांसी से उतार लिया, उसके प्रति हिंसा या प्रतिकार का भाव उनके मन में क्यों कर आता? वो दिलेर था और दिलेरों की भांति निष्कपट था। उसे इस समय क्रोध ना था, पश्चाताप था। दीन कहता था मारो, सज्जनता कहती थी छोड़ो। दीन और धर्म में संघर्ष हो रहा था। ठाकुर ने चौधरी का असमंजस देखा, गदगद कंठ से बोला, मालिक, आपकी दया मुझ पर हाथ ना उठाने देगी। अपने पाले हुए सेवक को आप मार नहीं सकते, लेकिन यह सिर आपका है। आपने इसे बचाया था, आप इसे ले सकते हैं। यह मेरे पास आपकी अमानत थी, वो अमानत आपको मिल जाएगी। सवेरे मेरे घर किसी को भेजकर मंगवा लीजिएगा। यहां दूंगा तो उपद्रव खड़ा हो जाएगा। घर पर मेरे कौन जाएगा कि मुझे किसने मारा? जो भूल चूक हुई हो क्षमा कीजिएगा। यह कहता हुआ ठाकुर वहां से चला गया। धन्यवाद।
कविता, कहानी, बाल रचना, गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें हिंदयुग्म.com।